بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین. دیکھیے سورت یاسین سے شروع ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. اللہ تعالیٰ نے کچھ لفظ ایسے رکھ دیے کچھ سورتوں کے شروع میں کہ جو انسان کو بے بس کر دیتی ہیں. کیا؟ کہ جب تک اللہ تعالیٰ معنی نہ بتائے انسان انہی الفابیٹک جن کو جوڑ کر پی ایچ ڈیز کر لیتا ہے, بڑی بڑی اس کے پاس ڈگریز آ جاتی ہیں, لیکن اس کے معنی اللہ کی مرضی, اللہ کی مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کے بغیر سمجھ نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ یہاں یاسین ہے, تو اگر اس کو یاسین اس طرح میں نے پڑھا, یس کیوں نہیں پڑھ دیا, یس کیوں نہیں پڑھ دیا, یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو پہلی بات تو اس آیت میں سے بھی ہمارے غور و فکر اور تذکیر کی کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر ٹھیک پڑھ بھی نہیں سکتے, سمجھنا تو کیا بات ہے. یعنی جیسے الف لام میم ہے, ہم اس کو علم نہیں پڑھتے, الف الگ لام الگ میم الگ. تو یاد رکھیے کہ جس طرح دنیا کی لینگویجز کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے نا, آپ کو اگر انگلش سیکھنی ہے تو ڈکشنری لے لیں گے, اردو سیکھنی ہے تو ڈکشنری لیں گے, اس طرح قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے جو ڈکشنری ہے نا وہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کس کو کیسے پڑھنا ہے, کیا کہنا ہے, اس پہ ہم اپنی کلاسز میں بہت ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہلے ہی لفظ نے ہم کو روک دیا اس بات پہ کہ تم قرآن پڑھنے بیٹھے ہو تو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. پھر والقرآن الحکیم, اور قسم ہے, یا قسمیاں وہ لے لیجئے, تو والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرپور ہے. ہم قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نہ سمجھ آنے والی بات, 1400 سال پرانی باتیں, آج کے دور میں تو اس کو کوئی کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے قرآن کی, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں قرآن کی قسم؟ تو ہم کھا سکتے ہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں اور اس کی صفات کی کھا سکتے ہیں. تو قرآن اصل میں اللہ کا کلام ہے. یہ ایک علمی بحث ہے جس کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں وہ بات کو یقین دلانے کے لیے نہیں کھاتے, بلکہ اس بات کو گواہ بنا کر کرتے ہیں. حکمت کیسے ہے قرآن؟ قرآن خود بھی حکیم ہے, فیصلے بھی کرتا ہے, اس کو پڑھنے کے بعد حکمتیں بھی آ جاتی ہیں, لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے. بعض لوگ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ اچھا جی ثواب ہوگا, وہ تو ہوگا انشاءاللہ, لیکن ٹھیک پڑھنے کا ہوگا, غلط پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا, بلکہ باقاعدہ اس پہ پوچھ ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو انسانوں کو پڑھنا آ جاتا ہے, لوگوں کی سائیکالوجی کیا ہے, لوگ کس طرح سوچتے ہیں. تو جس کو حکمت چاہیے وہ قرآن سے جوڑ لے. یہ حاکم بھی ہے, حکمت والی بھی ہے, دوسروں کے درمیان فیصلے بھی کرواتی ہے. یعنی اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزے رکھے ہوئے ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کرتے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اپنی عملی زندگی کے کتنے نقطے ملتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہو گئی یاسین کی, دوسری بات ہو گئی والقرآن الحکیم کی, تیسری بات دیکھیے انک لمن المرسلین, بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پیغمبروں میں سے ہیں. گویا کہ آپ کو تسلی دی گئی. یہ صورتیں اس دور میں نازل ہو رہی تھیں جس وقت اللہ کے نبی کی بڑی مخالفت تھی. ہر گھر میں جہاں بھی اللہ کے نبی کا پیغام پہنچتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو اس سے متاثر ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ان کے گھروں کا سکون برباد ہو رہا تھا. ان کی زبان میں کہیں مرد دین کی طرف آتے تو بیویاں ان سے لڑتی, طلاقوں کی نوبت آ رہی ہے, اور کہیں اگر بیویاں دین پہ آ جاتی تو مرد دھمکیاں دیتے ہوئے دکھتے ہیں, کہیں جوان بچے جو تھے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں تو ماں باپ ان کو کہتے ہیں ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گے اور ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. اس قسم کی ایک کہانی تھی کہ جدھر جدھر دیکھو ایک ہی لفظ تھا, کبھی مجنوں کبھی دیوانہ. قرآن پاک میں یہ ساری باتیں ہیں. تو جب اتنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے نا, تو بعض دفعہ ٹھیک بات کرنے والے کو بھی شک پڑ جاتا ہے کہ میری بات ٹھیک نہیں ہے. بس آپ دیکھیے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ کہیں بھی جائیں, کوئی ایک بندہ آپ کو کچھ کہے تو آپ کہیں گے چھوڑو ایسے ہی اس نے میرے سے جل کے کہہ دیا, تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی آپ کی وہی بات کہے, پھر آپ تھوڑا سا تشویش محسوس کرتے ہیں کہ اچھا اس نے بھی کہا. تین چار لوگ جب آپ کو ایک ہی بات پہ ٹوکے نا, تو پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ نہیں کوئی بات ہے ضرور, سب غلط نہیں کہتے. تو پہلی دفعہ دین کے نام میں جب کوئی ہماری مخالفت کرتا ہے نا, تو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن جب پورا معاشرہ ہی آپ کو ایسے کہنے لگ جائے کہ آپ کو ہو کیا گیا, آپ باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں, آپ کو کیا ہو گیا, کوئی کہتا آپ کے اوپر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے نعوذ باللہ, کہ جو جن کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, ان ساری باتوں سے اللہ کے نبی اداس رہتے تھے. आपको यकीन था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन इंसान होने के नाते बशरियत की वजह से आपका दिल उदास था, तो अल्लाह तआला ने कहा नहीं, आप इन्ना कलम मिनल मुरसलीन, आप हमारे भेजे हुए हैं। इसमें देखिए कितनी मोहब्बत भी है कि हमने आपको भेजा है। जाओ, हम उर्दू में अपनी ज़ुबान में नहीं कहते, मैं तुम्हें भेज रही हूँ ना, जाके कह देना मुझे फ़लाँ ने भेजा है। एकदम हिम्मत बनने लगती है। तो अल्लाह ने कहा अपने नबी को, गम ना कीजिए, आप खुद तो नहीं आके कहने लगे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि साथ और भी कह दिया अला सिराते मुस्तकीम, आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे हैं। कहा तंजील अल अजीज रहीम, ये कौन सा कुरान है, ये कौन सा रास्ता है, ये दीन कौन सा है, ये गालिब और मेहरबान रब ने नाजिल किया है। आप देखिए तीन ताकीदें हैं इसमें। अल्लाह के नबी को कहा हमने आपको भेजा है, आप सीधे रास्ते पे हैं, और गालिब हिकमत वाले का नाजिल करदा ये कुरान है। ये तसल्लियाँ अल्लाह ताला अपने नबी को क्यों दे रहा था कि आप इस रास्ते पे जमे रहें। मेरे और आपके लिए इसमें क्या, बिल्कुल वही हालात जो कल थे आज भी होंगे, हर दौर में होंगे। हम जिस माशरे में जीते हैं ना, ये ख्वाहिशों का माशरा है। हम तो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे जहन में आता है कि अल्लाह और उसके मुकाबले में बुत, मुशरिकीन ने मक्का या काफिर। हालांकि आपको पता है कि वो बुत तो पत्थरों की सूरत में उनको दिखते थे। आज के जिस माशरे में मैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करने निकले हैं, यहाँ ना नज़र आने वाले बुत हैं। कहीं ख्वाहिशों का बुत, कहीं दुनिया की मोहब्बत का बुत है, कभी मटीरियलिज्म का बुत है, कहीं दिखावे का, रिया का, हसद, इतना कुछ है इंसानों के दिल में। अब किसी भी सोसाइटी में दो दीन साथ साथ चल रहे होते हैं। पहले तो बाप दादा का दीन गालिब होता है, चारों तरफ वही बातें जो माँ बाप को करते देखा, जो उन्होंने किया, बड़ों की बातें, कभी रसूमात के नाम पे, कभी फंक्शंस के नाम पे, कभी ज़िंदगी गुजारने के तरीकों पे। फिर इसमें अल्लाह ताला किसी एक बंदे को चुनता है कि जो जाके लोगों को अल्लाह की मर्ज़ी बताता है। उस दौर में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, बिल्कुल अंधेरे छा चुके थे उस दौर में। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद पहले नबी थे आप जो अरबों की तरफ भेजे गए। तो इतना ज़्यादा माहौल ख़राब था कि अल्लाह के नबी को तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि आपको हमने भेजा है और आप गालिब हैं, और आप इनकी बातों पे बिल्कुल ना दिल मैला करें, और आपको हमने एक बहुत बड़े मकसद के लिए भेजा है। क्या, लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि वो कौम डराई जाए या वो लोग डराए जाएँ जिनके बाप दादा को डराया ही नहीं गया। अब यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक दो बातें हैं, आप देखिएगा कि पहली बात देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने और कुरान के नाजिल करने का मकसद क्या है। लितुन ज़िरा, अगर आप इसको हाईलाइट करके देखें तो कुरान का मकसद नज़ूल क्या है, इंतज़ार। और अगर आपसे कोई पूछ लेना कि पूरे कुरान का जो बुनियादी नुक्ता है, जो अल्लाह के नबी को समझा के भेजा गया था, तो वो इंतज़ार था। आप अगर वही की तर्तीब सुने, हमने एक साल दौरे कुरान जब किया तो उसमें पूरा तर्तीब नज़ूल के अतबार से किया था। तो आप देखिए कि इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी की आयतें जब नाजिल होती हैं, शुरू में अल्लाह के नबी को तसल्ली दी गई, फिर या अय्युहल मुद्दस्सिर में कुछ ज़ाती तरबियत की बातें हुई, और फिर उसी में क्या, कुम फानज़िर, खड़े हो जाइए और डराइए। फिर कुछ अरसे के बाद कहा वानज़िर अशीरतकल अक़रबीन। आप सोचिए ज़रा कि अल्लाह के नबी से सारे माशरे ले बहुत प्यार करते थे, आप सबकी एप्पल ऑफ आई थे अपनी ज़ुबान में, कोई किसी को आपने कभी सताया नहीं था, आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे लोग, लेकिन जो ही आपने दीन की दावत दी तो लोग आपके दुश्मन हो गए, कहने लगे कि ये बातें हमने कभी पहले सुनी नहीं। बस उनके बाप दादा के तौर तरीके क्या थे, उन्होंने पत्थरों के बुत बना के उनको पूजना शुरू किया था, और पत्थरों के बुत को एक दिन में थोड़ी बनते हैं, इसमें तो बहुत टाइम लगता है। वो भी एक वक्त के अपने नेक लोग थे जो दुनिया से जाते गए और उनके बुत इन लोगों ने बना लिए। और मक्का वालों की जितनी दुश्मनी थी ना अल्लाह के नबी के साथ, वो लफ्ज़ इंतज़ार की वजह से थी। आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप अपने इमेजिनेशन में सोचिए कि अल्लाह के नबी सल्लम पे दिन रात कुरान पाक नाजिल हो रहा है। हमने देखा मक्की दौर में 2/3 नाजिल हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि अल्लाह के नबी लोगों के पास जाते और उनको कहते अबू लहब, अबू फ़लाँ, 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 तुम्हें पता है कि आज मेरे पास एक ऐसी आयत उतरी है जिसको तुम वजीफे की तरह पढ़ो तो तुम्हारे बच्चों के रिश्ते हो जाएंगे, एक ऐसी आयत पढ़ी है कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओगी, एक ऐसी आयत पढ़ी है कि आप अपना घर खरीद लेंगी, एक ऐसी आयत पढ़ी है। यानी वजीफ़ों की तरह अगर अल्लाह के नबी मक्का वालों को कुरान सुनाते, कोई आपका दुश्मन होता, वो तो खुश होते कि अल्लाह कितना अच्छा दीन है। आज भी मैंने खुद देखा है कि इंडिया में बाज़ दफ़ा हिंदू मुसलमानों की दरगाहों पे जाके मन्नतें मानते हैं, जब किसी को फ़ायदा चाहिए होता है तो वो ये नहीं देखता कुफर से मिल रहा है इस्लाम से मिल रहा है, वो ले लेता है। अल्लाह के नबी ने अगर लोगों को यही दीन दिया होता जो आज हम मुसलमानों में भी आ गया कि वजीफे कर लो, इसकी आयतें लिख के लगा लो और इसके कुछ पानी में घोल के दम कर दो और इसका जादू टोने के लिए इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी से बच्चियों की शादियां करो और सर के ऊपर कुरान रख दो एंड पे, तो आप बताइए कि क्या 13 साल आपकी मुखालफत होती? नहीं होती। जितनी मुखालफत थी वो लितुन ज़ीरा पे हुई। जब कुरान किसी भी सोसाइटी में रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज, उनके लाइफस्टाइल, उनके तौर तरीकों पे चोट डालता है, फिर लोग इसके दुश्मन होते हैं। आज के दौर की मिसाल लीजिए, क्योंकि हमें तो अपने लिए सुनना है ना, कि क्या आज आप कह सकते हैं कि बींग अ मुस्लिम, हम सब जो भी हैं, चले नॉन मुस्लिम्स को एक तरफ कर दें, कोई हम में से ऐसा है जो कहे कि मुझे कुरान पसंद नहीं, मुझे कुरान नहीं पढ़ना? कोई भी नहीं, जरूरत भी नहीं कोई कर सकता। कोई एक लफ्ज़ ना कुरान पाक का ठीक पढ़ता हो ना, लेकिन इसके बावजूद वो इस कुरान को ऊंचा रखता है, हाथ धो के, बल्कि जो जितना कम पढ़ते हैं वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो उतने धो धो के हाथ उठा रहे होते हैं कि क्योंकि यह इसको पीछा नहीं करना, अलमारी में अगर ऊपर कुरान है तो नीचे जूते नहीं रखने, जूते पहन के नहीं पढ़ना, ऊपर नहीं, कितनी ज़ाहरी तज़ीम करते हैं ना। लेकिन आप देखिए कि जिस कुरान को कोई समझ भी नहीं सकता उसके बावजूद उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वही कुरान हमें कुछ ख़ास चीज़ों से रोकता है तो हम रुकते हैं, कुछ करने का हुक्म देता है तो करना मुश्किल है। तो कुरान का सबसे ज़्यादा जो ता है ना, जो लोगों को इससे दूर करता है, वो क्या है कि इसको पढ़ने के बाद हमारी ख्वाहिशों पे पाबंदी लगेगी। अबू जहल के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा आया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है कि आपका दीन सच्चा है, आप बिल्कुल अल्लाह के नबी हैं और आप जो दीन लाए हैं ये सच्चा दीन है, लेकिन मैं इसलिए मुसलमान नहीं होता कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मुझे इसके बाद नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, रोज़े रखने पड़ेंगे, शराब छोड़नी पड़ेगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा, और अभी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आप सोचिए ज़रा, लितुन्ज़िरा क़ौमा मा उन्ज़िरा आबाहुम फ़हुम ग़ाफ़िलून। उस दौर में अबू जहल की जरूरत ज़्यादा थी या आज के मुसलमान की ज़्यादा है? अबू जहल को ये पता था कि मुसलमान होने का मतलब पाबंदियों का लगना है, फिर जन्नत मिलेगी। आज हम कहते हैं तुम मुसलमान बन के रहो तो फिर जो मर्जी करो जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम नबी के मानने वाले हो। तो बहरहाल आप देखिए कि कुरान इस तरह हमारे जहन की तहें खोलता है कि गफलत में पड़े हुए लोगों को अगर आज भी जगाना है, कोई आपकी मेरी नसीहत से बात नहीं बनेगी। डरावे, डांटना, गुस्सा, डांट डपट, एक ही तरीक़े को उनको अल्लाह की इस किताब से जोड़ दीजिए, क्योंकि ये किताब इतनी खूबसूरत है, एक दफ़ा जिसकी ज़िंदगी में ये हिदायत की किताब बन के खुल जाती है फिर उसकी ज़िंदगी में चेंज आती है, ये हकीकत है। आज हमने इस किताब को सब कुछ किया, बरकत की किताब समझा, पढ़ने की किताब समझा, इसको सीखने की किताब समझा इससे, और लेकिन आज जिस चीज़ से मुसलमान भी डरते हैं वो क्या है, इसको हिदायत की किताब बनाने से डरते हैं। ये मैनुअल ऑफ लाइफ था, हम इसको खोलते हुए डरते हैं। जैसे आप देखिए कि मिसाल है कि आपको रेसिपी बुक को मिल जाती है तो क्या आप रेसिपी बुक को सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो खाना बन जाएगा? आप कहते नहीं, हाँ रेसिपी बुक तो पढ़ लूँ खोल के, लेकिन खाना पकाने के लिए तो ओवन चलाना पड़ेगा और शायद उंगली जल जाए, हाँ इसके लिए तो इतना कुछ करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, तो मैं नहीं करती, बस मैं खाली रेसिपी बुक को खोल के पढ़ती रहूँ, तो क्या भूख के वक्त में आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो कुरान की और जितनी भी खूबियाँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको हिदायत के लिए पढ़ना है। दुख की बात क्या है कि आज हम मुसलमान इस किताब से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं लक़द हक्कल कौल अला अक्सरी फ़हुम ला युमिनून। कुछ लोगों पर तो अल्लाह की बात पूरी हो गई कि वो ईमान नहीं लाएंगे। वो कहते हैं ना कि मर्द नादा पे कलाम में दिल फरेब बे असर, कुछ लोग इतने सख्त दिल होते हैं कि उनको किताब पढ़ के मौका भी मिल जाए तो भी वो उसे हिदायत नहीं लेते, बस पढ़ने छोड़िए पढ़ाने भी लग जाते हैं तो फ़ायदा नहीं होता, सुन सुन के सुन होने लगते हैं। वजह क्या कि ये किताब उनके अंदर को नहीं तोड़ती, उनके अंदर तब्दीलियाँ नहीं लाती। आप भी तो अक्सर सोचते होंगे ना कि अच्छा फ़लां क्यों ऐसा है, फ़लां तो कुरान पढ़ने वाले हैं, फ़लां तो दीन को जानते हैं। बस आप देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब यहाँ बैठ के कुर्सी में से जाके बातें करते हैं, बड़ी खूबसूरत करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, लोग कहते हैं आप बड़े नेक हैं, कल हमारे ही अपने घर में कोई मौका आ जाता है खुशी गमी का, हम बिल्कुल ही बदल जाते हैं, कल हमें ही घर लेना पड़ता है, जायज़ और नाजायज़ तरीके से दोनों का फ़र्क है, हम कहते हैं सब ले रहे हैं हमें भी लेना पड़ेगा। फिर जब ये तजाद लोग देखते हैं ना हमारा, कि अच्छा कुरान पढ़ते हुए तो ये बातें होती हैं, लेकिन इनकी अमली ज़िंदगी में ज़रा ऊंच नीच इनकी ज़िंदगियों में आती है तो ये बिल्कुल भिदक जाते हैं। इधर रमज़ान आएगा तो और दिल बन जाएंगे, रमज़ान चाहेगा तो कुछ और दिल बनेगा, तो नतीजा क्या है कि लोग फिर इस कुरान से दूर होने लगते हैं। तो कुरान से जुड़ने के बाद, इस मुसलमान होने के बाद, बस एक ही तरीका है हमारा बचने का, और वो क्या कि हम अपने आप को इसके मुताबिक ले आएं। कितने दिन की ज़िंदगी है मेरे और आपके पास? चंद दिन की है ना। आप देखिए 65 ईयर की एज को आप एक एवरेज बना लें, आगे इस सूरत में बात आएगी, आप पढ़िएगा जाके। शुरू के 10 से 12 साल निकाल दीजिए, गफलत के होते हैं, अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया बच्चे को जब तक कि वो बालिग नहीं होता। आखिर के भी 10 साल निकाल दे, उसमें ख्वाहिश अमूमन मरी चुकी होती हैं। बीच में ये 30-35 साल ही बचते हैं ना, 40 साल लगा लीजिए, पलक झपकते में गुजर जाते हैं। अगर एक इंसान इतनी खूबसूरत जन्नत पाना चाहता है तो क्या वो इन 30-40 दिनों का सब्र नहीं कर सकता? ये दिन भी नहीं है वल्लाही, आखरत का एक एक दिन दुनिया के पूरे कई के हजार सालों के बराबर है। तो सिर्फ बात यह है कि इस दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी मान ले, उस दुनिया में अल्लाह हमारी मर्ज़ी मान लेगा। कहते हैं ना कि ये दुनिया रब चाही तो वो दुनिया मन चाही। हम क्या चाहते हैं? सब कुछ इस दुनिया में भी हमारी मर्ज़ी का हो और वहाँ भी हमारी मर्ज़ी का हो। अब ये कुरान मक्का वालों के दिलों पे असर करता था, शक नहीं है इसमें, ये तो फितरत की पुकार है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इतने सख्त दिल हो चुके थे, तासुब की वजह से प्रेजरिस थे, वो कहते थे कि हम अपने बाप दादा के तौर तरीके नहीं छोड़ेंगे, जिसमें अबू जहल का नाम आता है, जिसमें उतबा, शैबा, रबिया और बहुत बड़े बड़े इस्लाम दुश्मन थे। अगली आयतों में अल्लाह ताला उनकी मिसाल दे के हम सबको सोचने पर माइल करते हैं कि इन न जालना फिया नाकि मगलालन फ़कीलस्कानी फ़हम मुकमाहून। फरमाया कि हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक इसमें फंसे हुए हैं। तसव्वुर तो कीजिए ज़रा, फ़हीलस्कानी फ़हम मुकमाहून, और इनके सर यूं हिल रहे हैं। वजालना मिन बैन अईदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़ख्शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने इनके आगे भी एक दीवार खड़ी कर दी और एक दीवार इनके पीछे भी खड़ी कर दी है और इनके ऊपर पर्दा डाल दिया, और अब इनको बिल्कुल नहीं नज़र आता, ये देख नहीं सकते। हाल इनका क्या हो गया? व सवाउन अलैहिम अनज़र तुम अम लम तुनज़िर हुम ला युमिनून। चाहे तुम इनको डराओ चाहे तुम इनको ना डराओ, ये नहीं मानते, ये ईमान नहीं लाते। ये कौन लोग हैं? तासुब वाले लोग। आप देखिए कि कुरान सुनने वाले जो लोग होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हिदायत की तलब लेकर आते हैं दिल में, चलो जाके सुनते हैं, कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा ना, शायद कोई बात हमारे दिल को लग जाए, शायद हम भी किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आए। ऐसे लोग जितने मर्जी भी भटके हुए हों, यानी दुनिया की ज़ुबान में मैं यूँ कह सकती हूँ कि फिस्क, गुना, फहाशी, ओरियानी, हत्ता के जिस्म फरोशी करने वाली औरतें, हत्ता के कुछ और इस किस्म के काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जो ही कुरान का मौका मिलेगा ये करीब आ जाएंगे। आप देख लीजिए, अपने इर्द गिर्द नज़रें उठा के देखिए, आपको आज के दौर की कई ऐसी शख्सियात दिखेंगी। कोई पहले कैट स्टीवन था, आज यूसुफ इस्लाम के नाम पे आपको दिखता है। क्या हुआ कि दीन से दूर थे, इस्लाम से दूर थे, अल्लाह ताला ने उनके दिल पे नॉक किया, दिल खोल दिया, आज इस्लाम में आ गए। ठीक है ना? तो जो लोग कुफर में या गुनाहों की ज़िंदगी में होते हैं, उनको मौका मिले तो वो ज़रूर आते हैं। मसलन इसको आज हम अपनी ज़ुबान में यूँ कह सकते हैं, कुछ लोग आपको बड़े फैशनेबल दिखते हैं, बाज़ लोग आपको बड़े मॉडलिंग करते हुए भी दिखेंगे, बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में नमाज, रोज़ा, दीन नहीं होता। वजह क्या है कि जिस माहौल में पैदा हुए वो उसी का रंग बन गए, असर हो गए, लेकिन जो ही अल्लाह ताला मौका देता है वो आ जाते हैं। लेकिन एक दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो दीन में होते हैं लेकिन एक ख़ास रंग के अंदर रंगे होते हैं, उनके ऊपर एक ख़ास माहौल का असर होता है। वो कहते हैं कि हम जितनी मर्जी किसी की बात अच्छी सुन लें, हम सिर्फ अपनी जमात की मानेंगे, अपने गिरोह की मानेंगे, अपने इदारे की बात मानेंगे। फलां बात करेगा तो बहुत अच्छी है, फलां नहीं करेगा तो वो बात अच्छी नहीं है। इसका अल्लाह ताला ने यहाँ इतना ज़बरदस्त नक्शा खींचा है कि उसकी गर्दन में एक तौक है, और आपने सुनते वक्त शायद इसकी शिद्दत को महसूस किया है कि दीवार एक पीछे है एक आगे, और इनके बीच में यूँ है कि जैसे गले में आप सोचिए कि कॉलर लग जाता है ना किसी की गर्दन, कभी आपने मोहरों का ऑपरेशन हुआ देखा हो, या प्लस्तर जो लग जाता है ना, बंदा हिल सके, और आगे और पीछे दीवार हो, आप सोचिए उस शख्स के अंदर कितनी तकलीफ़ का एहसास होगा। ये वो लोग हैं जो ख़ास किसी वजह से इस्लाम की और दीन की बात सुन के भी नहीं मानते। उनके दिल गवाही देते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर वो अपने वक्त के हिसाब से उसी माहौल में रखने के जैसे नहीं मांगते। तो क्या करें फिर ऐसे लोगों को? इनको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको हिदायत की ज़रूरत है। 13 साल तक मक्का में अल्लाह के नबी ने इतनी तबलीग की, दावत का हक अदा कर दिया, मारे भी खाएं, चोटें भी खाई, साथियों को भी तकलीफें हुई, पैदल ताइफ तक गए, लेकिन जब देखा कि अब इन दिलों में कोई तेल नहीं, अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा कि चलिए अब हिजरत की राहें हम आप पे खोलते हैं, मक्का से मदीना चले जाएं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि किसी को दीन से चिढ़ नहीं चढ़ानी चाहिए, अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से दावत दी जाए, सब्र के साथ, हौसले के साथ। देखिए कुछ दालें देर से गलती हैं, कुछ जल्दी गलती हैं, कुछ दालें अभी आप रख के 2 बार डालते हैं तो दाल गल गई, और कुछ सारी रात भिगोए रहे हैं फिर भी नहीं गलती। इसी तरह इंसानों के दिल भी होते हैं। कभी आपको अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे इंसान से वास्ता पड़ जाए कि जो बज़ाहर दीन से बहुत दूर है, तो पहले तो आप सोचें कि उसका प्रॉब्लम क्या है। कोई दाग जितना पुराना हो जाता है ना, उसको फिर धोने के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है बचपन से माँ बाप ने तरबियत ही नहीं अच्छी की, नमाज रोज़ा कहा भी तो वो फ़र्जी रस्मी जो दीनदारी की बात होती है, ऊपर से माहौल का असर, दोस्त अच्छे ना मिले। तीसरा हो सकता है कारोबार शुरू किया तो वो और ही अच्छे लोगों में नहीं हुआ। तो हर बंदे को पहले आप अनकवर करें, गिने उसके अंदर कितने कुफर के अंधेरे हैं, कितनी जहालतें हैं, फिर एक एक करके खोलते जाएं खोलते जाएं। आप देखेंगे कि जब आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी को समझ जाते हैं ना, उसका वीक पॉइंट, वो किस चीज़ से खुश होता है, कोई तारीफ़ से खुश होते हैं, कुछ गुस्से से खुश होते हैं, कोई बेरुखी से खुश होते हैं, कोई गुस्सा मान जाते हैं, कोई रोब मान जाते हैं, कोई मुस्कुराहट से, कोई खामोशी से, तबलीग है ना ये बिल्कुल एक डॉक्टर वाला काम है। आपके 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे का मिजाज अलग होगा, शौहर साहब का मिजाज और होगा, बीवी का मिजाज और होगा। तो इन सारी चीज़ों को जब बंदा समझ जाता है, फिर एक एक करके तरीके से, सब्र से, हौसले से अल्लाह के नबी ने काम किया। आप अपने दीन में उतने पक्के होते जाए, दूसरा आप देखिएगा उस पर आपका रंग आएगा। हमारा मसला क्या है कि जब दूसरा नहीं अमल करता तो हम उसके मामले में तो बड़े स्टबर्न होते हैं, लेकिन बाकी मामलात में पीछे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बात कहते हैं कि आप इनको समझाते रहे, इन्नमा तुनज़िरु मनित्तबा ज़िक्र व हशीजर रहमान बिल गईब। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नबी आप तो सिर्फ उनको डरा सकते हैं, उस शख्स को कि जो जिक्र की पैरवी करे। यहाँ जिक्र से मुराद क्या है? कुरान, अल्लाह का दीन, नसीहत। वह हशीज और रहमान बिल गैब, और रहमान से बिन देखे डरे। देखिए कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। डरने के लिए बात होती है ना तो अल्लाह ताला का नाम आना चाहिए था, अल जब्बार, अल कहार। हालांकि यहाँ के रहमान से डरो, वो क्यों? इसलिए कि बहुत दफ़ा लोग अल्लाह ताला के रहमान होने की वजह से ढीले हो जाते हैं। वो तो बड़ा रहम वाला है, हम कुछ भी कर लेंगे तो वो अच्छा ही करेगा। हालांकि अमली तौर पे एक माँ इस तरह नहीं कर पाती। आप देखिए कि माँ कितनी नरम मिजाज क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चा उसको सताता है तो बाज़ दफ़ा माँ उसको थप्पड़ लगा देती है। बाज़ दफ़ा बड़े बच्चे माँ बाप को इतना सताते हैं कि माएँ उनको कहती है मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो अल्लाह से बिन देखे डरना, ये कितना खूबसूरत अमल है कि ये बंदे को क़यामत के मैदान में खड़ा कर देता है। वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, एक जगह आता है कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। वो कैसी जन्नतें हैं ये अब जब जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ मेरे और आपके लिए अमल की बात है कि अल्लाह का डर पैदा करना। और आप देखिए कि अल्लाह का डर क्या होता है, यही है जो हमें गुनाहों के मामले में रोकता है। आप रात को चलते हैं, 12 बजे के वक्त खुली रोड पे जाते हैं, रेड लाइट पे रुकते, कोई कैमरा देख रहा होता है उस वक्त, ये आपको डरावा दिया होता है कि आप बड़े कैमरे लग गए, हर कैमरे को वो बैठ के 24 घंटे देख नहीं रहे होते, अगर बंद भी रही हैं वीडियोस तो क्या वो 24 घंटे आपकी मेरी देखेंगे? ओवर स्पीडिंग से हम क्यों डरते हैं? सीट बेल्ट यहाँ तो पता नहीं, मेरे हाल आज़ादियाँ ही हैं, हम जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ तो लोग रात के 12 बजे भी निकलते हैं तो सीट बेल्टें बांध के और ओवर स्पीड नहीं कर सकते। कुछ सड़कों के ऊपर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लगाई होती हैं कि उससे ओवर स्पीड जब गाड़ी होती है तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है। तो अब आप बताइए कि इंसानों की मशीनों को, उनके गैजेट्स का इतना डर कि दिन तो दिन, रात के अंदर भी हम लोगों से डरते हुए अपने काम ना करें, या लोगों से डरते हैं या जो फाइन होगा उससे डरेंगे, इज्जत से भी डर लगता है बंदे को कि इंसल्ट होगी अगर पुलिस मैन ने रोक लिया, लेकिन अल्लाह का डर कितना है? ये है असल मेरे से पूछने वाली बात, जो मैं खुद से पूछूं कि मेरे दिल में अल्लाह का डर कितना है। हम कोई बुरा काम करें, ऊपर से एक बंदा आ जाए कोई भी, तो हम रुक जाते हैं ना, शर्मिंदा भी होंगे। जिसकी बुराई करे वही ऊपर से आ जाए तो रंग बदल जाता है। तो आप सोचिए कि रब जो वहाँ मौजूद है, और वो रब जिसके साथ इंसान को हर लम्हे का काम पड़ता है, कभी हमने अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस किया? वमा कदरुल्लाह हक का कदरी, लोगों ने अल्लाह की वो कदर ही नहीं की जैसी के कदर करने का हक है। हम तो अल्लाह ताला के मामले में बस क्या सोचते हैं, वो एक ज़ात है, खाना काबा में जाते हैं तो उसके नाम पे तवाफ़ कर देते हैं, हाँ वो जिसके साथ मस्जिद में हम जाके जिसके आगे नमाज़ पढ़ते हैं। हालांकि रब वो ज़ात है कि जिसके साथ बंदे का 24 घंटे का ताल्लुक़ है, जिसके साथ इंसान अपने आप को जोड़े तो उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। और इस बात का एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्ना नहनु नुहयिल मौत व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, बेशक अलबत्ता हम ज़रूर मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। व कुल्ल शैइन अहसैनाहू फ़ी इमामिन मुबीन, और हमने हर चीज़ को एक बहुत रोशन किताब में लिख दिया। अब आप देखिए कि ये आयत नंबर 12, मेरा ख्याल है कि मैंने जिन आयतों पे बहुत ज़्यादा दफ़ा दर्स दिया वो यही है। इसके ऊपर मैं भी बात करने के बजाय आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक सीडी है उसको सुन लीजिए, दो तीन दफ़ा इसको मुख्तलिफ नामों से किया। एक तो इसाले सवाब के नाम पे एक सीडी बहुत आम हुई थी दावा सीडीज़ के अंदर भी, अगर आप यहाँ से सुने आपको सिर्फ इस एक आयत की तफसीर में पूरा नामा अमाल की डिस्क्रिप्शन है कि हमारा नामा अमाल किन चीज़ों से मिलके बना है। हम जो बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम लिखते हैं, तीन तरह की चीज़ें हमारे नामा अमाल में आती हैं। अगर मैं मुख्तसरन आपको बता दूँ, जो मैंने बोला, जो मैंने सोचा लिखा, इस वक्त भी मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना तो ये ज़मीन हमारे प्रिंट्स ले रही है, हम उठ के चले भी जाएंगे लेकिन क़यामत के दिन ये जगेंगे वही देंगी कि यहाँ बैठ के इन्होंने मेरी बात को सुना था। आपकी गाड़ियाँ जहाँ से घूम के आई हैं उन जगहों पे आपके प्रिंट्स लगे हैं, नेकी के लिए आए हैं तो नेकी की मोहरें हैं, और खुदा न खास्ता किसी गुनाह के लिए इंसान ट्रैवल करके जाता है तो वो पूरे रास्ते उसके खिलाफ गवाहियाँ बनेंगे। आप सोचिए ज़रा, हम सोच भी नहीं सकते, और हमारी ये ज़मीन भी मूव कर रही है 24 घंटे में, तो ये देखिए सूरज के गिर्द घूम लेती है, तो जहाँ जहाँ गुनाह करते हैं उस वक्त हमारी वहाँ मोहरें लगती हैं। बिल्कुल आप सोचें जैसे जहाज़ है ना, जहाँ से जहाज़ गुजरता है तो पीछे उसके एक धुआं सा दिखता है, और जहाँ जहाज़ देखने में ऐसा लगता है खड़ा है लेकिन वो कितने हज़ारों मील इधर से उधर चला जाता है। बिल्कुल ये हमारी ज़मीन एक छोटा सा जहाज़ है जो इस पूरे एटमॉस्फेयर में फिर रही है, और आप कर रहे थे गीबत। मिसाल है कि 38 मिनट से हम सब यहीं बैठे हैं ना, लेकिन आपको पता है कि आपकी इस घर के नीचे की ज़मीन इन 38 मिनट में सूरज के गिर्द कितना घूम गई? यहाँ से देख लीजिए, जब बैठे थे तो सूरज उधर था, इधर आ गया। बिलफर्ज जहाँ हम कोई गुनाह का काम कर रहे होते तो वो सूरज का जितना सफ़र था ना, उस जगह हमारे उस गुनाह के मोहरें लग गई। हम जब गाड़ियों में, चलती गाड़ियों में गीबतें करते हैं, कभी हमें खौफ नहीं आता? क़यामत के दिन वो पूरे ज़मीन के टुकड़े बोलेंगे कि यहाँ से ये गीबत करता हुआ गुजरा। कितना इंसान ना समझ है, गुनाह करते हुए जितना मुझे दुख और सदमा जहाज़ में बैठे हुए लोगों को वल्गर और गंदी चीज़ें देखते हुए होता है। आप देखिए जब लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं, रातें भी होती हैं, बाद में वो बस दफ़ा उनके खिड़कियों के शटर भी बंद कर देते हैं कि अब सो जाएं, आप वॉशरूम जाते हुए नज़र आपकी डलेगी, हर एक की स्क्रीन पे आपको डिफरेंट चीज़ दिखेगी। तो मैं उस वक्त सोचती हूँ कि अल्लाह ताला अगर किसी के इस गंदी चीज़ को देखने से तुझे गुस्सा आ गया तो हम भी तो साथ ही गिरेंगे ना। मुसलमान फ्लाइटें होती हैं और बीच में आती हैं नमाज़ें, कितने लोग हैं जो उस वक्त जहाज़ में उठ के जाके नमाज़ पढ़ते हैं? ये तो हमारा हाल होता है। तो अल्लाह कहता है माँ कद्दम हुआ आसारा हूँ, जो जहाँ बैठ के स्टैम्प्स लगाते हो करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पूरी कोशिश होती है कि कभी भी नहीं छोड़ी, जहाज़ों में भी बिल्कुल नहीं छोड़ते। और जो मज़ा जहाज़ में नमाज़ पढ़ने का आता है, मैं उस वक्त सोच रही होती हूँ कि अब जहाज़ हमारा कितना चल रहा है ना ज़मीन में, तो उस जगह पर मेरे सजदे के निशान लगेंगे। और उस वक्त अगर जहाज़ कभी शेक भी करे तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अच्छे ही काम में जा रहे हैं ना, और सजदे की हालत में जान चली जाए और लंबी दिल करता करने को। लोग कहते हैं कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाए, मैं कहती हूँ नहीं, उस वक्त तो सबको सजदों में चले जाना चाहिए कि शायद अल्लाह को हमारा कोई तरीका, कोई काम पसंद आ जाए। तो हम अपनी ज़ात से हर जगह पे मोहरें लगा रहे हैं। आप जब भी ज़िंदगी में शऊर के साथ गुजरेंगे आप देखेंगे कि आप कैसे लगेगा कि आपके हाथ में एक स्टैम्प है और कहीं जन्नत की कहीं जहन्नम की मोहरें लगा रहे हैं। शादी हॉल में आप गए, 2-3 घंटे की दावत तो आम बात है, वहाँ बैठ के किन की कीमतें हो रही होती हैं, किसकी बुराई? हर वक्त हम बोलते हैं, हर वक्त हम बोलते हैं, और वहाँ हम अपनी मोहरें छोड़ के आते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो हमारे आसार जो नामे माल में होता है ये हमारे असरात भी हैं, इफ़ेक्ट्स, यानी एक हमारे इम्प्रेशंस के मानों में, इफ़ेक्ट्स के मानों में। हमें से हर बंदा अपनी ज़ात से अपने इर्द गिर्द पे कुछ असर छोड़ रहा है। कुछ लोगों के आने से गुनाह की महफिल और रंग में आ जाती है, जोश में आती है, कुछ लोगों के आने पर लोगों के सरों पर दुपट्टे आने लगते हैं। हर माँ अपने बच्चे पे एक इम्पैक्ट छोड़ रही है ना, हर बीवी अपने शौहर पे, शौहर बीवी पे असर छोड़ता है ना, तो हम सब अपनी ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर अपने असरात भी छोड़ रहे हैं। और आप देखिए कि तीसरी चीज़ हमारे लिए क्या है, हमारे बच्चे। व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जा रही हूँ, सबसे बड़ी बात है। मैं सिर्फ अपने आप से पूछूं और आप अपने आप से पूछें कि जिस तरीके ज़िंदगी पे इस वक्त मैं चल रही हूँ, व्हाट इज़ माई लाइफ स्टाइल, अगर इन्हीं दिनों में इन्हीं हालात में मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ जाए तो मैं अपने पीछे कैसी औलाद छोड़ के जा रही हूँ। क्या मैंने अपनी औलाद की सही तरबियत कर दी है? क्या मैं अपने बच्चों को एक सही गाइडलाइन दे चुकी हूँ? छोटे बच्चों से लेके जवान बच्चों तक को लेके बैठ जाइए, मुझे तो लगता है कि अभी हो सकता है 5 वक्त की नमाज भी हमने उनको पूरी तरह ना सिखाई हो। क्या ये सिखाना कि मरने के बाद तुमने हमारे साथ क्या करना है? आप कहते हैं कि हर अक्लमंद माँ और बाप कौन है कि जो अपने बच्चों को मरने के बाद जो माँ बाप के साथ काम करने होते हैं वो सारे तरीके बताए, गुस्ल कैसे देना है, हमारी कफन दफन कैसे होगा, हमारे लिए दुआ कैसे करनी है, उस वक्त हम नहीं पास होंगे उनके टटोलने के लिए। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं, उनकी बच्चों के बच्चों की फ़िक्र, उनकी डिग्रियों की फ़िक्र, उनके रिश्तों की फ़िक्र। हमें ये भी नहीं पता कि हमारा 7 साल से ऊपर का बच्चा हो गया और उसने नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उसको पढ़नी आती है कि नहीं आती है। जो आज हमारा पेरेंटिंग का स्टाइल बनता जा रहा है, इसको देख के तो ऐसे लगता है कि बहुत ही खाली हाथ है, तो बहुत सोचने की बात है। फिर सिर्फ औलाद नहीं है, हर एक की औलाद भी नहीं होगी, कईयों की तो अभी शादी भी नहीं हुई होगी आप में से, लेकिन वैसे भी मौत तो आ सकती है ना। अभी तक की मैंने इस ज़िंदगी में कितने लोगों को अपने लिए सदका जारिया के तौर पे तैयार किया। हमारी ज़िंदगियां सिर्फ खाने में, पीने में, कपड़े, जूते, हर वक्त खाना, हर वक्त खाना, कपड़े कपड़े, फन, एंटरटेनमेंट। छोटे मासूम जहनों को हम कार्टूनों में रंग देते हैं, कार्टून ही बना देते हैं, या म्यूज़िक सुनवा के उनके दिमागों को सोचने से मफलूज कर देते हैं। अब तो हाथों में गैजेट हैं, पहले तो एक टीवी था, सारे बैठ के देखेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। अब तो हर बच्चे को टीवी तो छोड़ दीजिए, अब तो वो बहुत बड़ा बात लगती, कौन टीवी चलाता है आज? आपके हाथों में इतने छोटे छोटे गैजेट्स हैं, आप इस पे कुरान रिकॉर्ड कर लें या आप इसके ऊपर बच्चों को गेम्स लगा दें। फ़ोन माओं के होते हैं, इस्तेमाल बच्चे करते हैं, वजह क्या है कि इसके अंदर जो रंग बिरंगी चीज़ें उनको दिखती हैं। आप फील किया करें अपने घरों में बैठ के, एक घर में 4-5 लोग हैं ना, एक एक कोने में बैठा हुआ अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है, उसको नहीं पता है दूसरे के साथ क्या हो रहा है। हम इस तरह की दीवारों में जकड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन हो गई है कि सिंगल, जैसे अमीबा सेल है ना, यूनि सेलुलर है। बिल्कुल यकीन कीजिए, इस वक्त एक फैमिली, एक घर में रहने वाले लोग कभी नहीं आप यकीन से कह सकते कि इस कमरे में बैठा शौहर बीवी 4 बच्चे उनका एक ही दुख सुख है। हो सकता है बाप उस वक्त किसी परेशानी में बैठा हो, माँ को उस वक्त कोई और गम सता रहा, और एक बच्चा एक अपनी दुनिया में, दूसरा कार्टून में, तीसरा, और उनकी नज़रें भी उस पर पड़ी हुई हैं, हाथ भी खाने पे बुलाएं तो नहीं उठ रहे। आप देख सकते हैं जो हालात हैं, और ये सिर्फ यहाँ का तो मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन जहाँ घूम के देखा है, आज हम मुसलमानों ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और उनको खुश रखने का हाल क्या समझा कि हम उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। तरस आता है अगर हमारे अपने बच्चे के पास उसका अलग सेलफोन नहीं है, और रहम आता है अगर उसके पास सेलफोन में सिम नहीं है। हाय मेरा बच्चा, कभी ये चीज़ें तसव्वुर में भी थी? आप सिर्फ आज से 15 से 20 साल पीछे जाके देखें, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप में कई साथी इसकी गवाही देंगे, घर में सिर्फ एक घर का फ़ोन होता था। ये तो मुझे भी अच्छी तरह याद है, जब पहली दफ़ा सेल फोन ईजाद हुए, सिर्फ घर के सरबराह के पास होते थे, वालिद के पास, किसने करना किसने पूछना, और बड़ा अजीब लगता था कि अब जहाँ फ़ोन करेंगे उठा लेंगे, मतलब छुप नहीं सकते वो हमसे, या हमें पता चल जाएगा कि वो किधर है। और आप देख लीजिए आज एक एक बंदे के पास, मैंने यंग बच्चियों के हाथों में दो दो फ़ोन देखे हैं जी, ये मेरे इस मुल्क की सिम का, ये मेरे उस मुल्क की सिम का। क्लासों में भी वो चैटिंग करते हुए दिखेंगे। शैतान ने हमें इतना आइसोलेटेड कर दिया, बैठे हुए हर वक्त उन पर ये चीज़ों पर लगे रहते हैं। तो क्या फिक्र है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं और क्या आगे छोड़ रहे हैं? अल्लाह ताला कहते हैं ये होगा, देख लेना। हम हर चीज़ को गिन रहे हैं, और उस गिनने के अंदर अल्लाह ताला ने बता दिया। आज अब देखिए, ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको चीज़ें इतनी बड़ी करके दिखाती है, क़यामत के दिन भी यही होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स होंगे जिस पे हम सब अपनी ज़िंदगी की मूवियाँ देख रहे होंगे। तो अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ रुकें इतनी बात पे, पहले रुकू में से हमें कितनी बातें पता चली। समझ के पढ़ना और ना समझ के पढ़ना कितना फ़र्क होता है। और अभी मुझे पता है कि मैं आपको सिर्फ इसका तर्जमा ही खोल खोल के बयान कर रही हूँ, इसकी तफसीर तो हम कर ही नहीं रहे और ना तफसीर की बात है। तो इस वक्त आज के दौर में जो हम मुसलमानों को ज़रूरत है ना, वो कुरान को समझ के पढ़ने की है। अपने बच्चों के लिए ये ना फिक्र रखें कि इनको कुरान पढ़ना है, अब तो वो भी नहीं दिखता। कैन यू बिलीव, 15-16 साल की बच्ची हो जाती है और कुरान नहीं पढ़ा होता। 15-16 साल का जवान बच्चा और नमाज नहीं उसको आती, सूरह फातिहा नहीं आती हमारे अर्ली टीनेजर बच्चों को। आप क्या बात करते हैं! अगर ये मैंने खुद ना ऑब्जर्व किया होता तो मैं कभी इतनी बड़ी बात ना कहती। मैं सोचती हूँ माँ बाप को नींद कैसे आती है, वो कैसे बच्चों के ईद के जोड़े बनाते हैं, वो कैसे उनके लिए सुबह क्या खाएंगे, दोपहर क्या खाएंगे, शाम क्या खाएंगे, ये क्यों हम करते हैं? उनको फिक्र क्या है कि इन बच्चों का बनेगा क्या? किसी की एक बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये तो सोचते हो कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, ये सोचो कि तुम्हारे बच्चों के मरने के बाद उनके साथ क्या होगा। कितनों ने सोचा कि हम में से कोई ये बर्दाश्त कर सकता है कि हमारे बच्चे आग में जाएं? और ये बच्चे तो मासूम हैं, फूलों जैसे बच्चे हैं। हम इनके हाथ में जो पकड़ाएंगे ये वही करेंगे, हम इनको जो पहनाएंगे ये वही पहनेंगे। यकीन करें कि लिबास का इतना असर होता है बच्चों के ऊपर। एक साथी थी तो उनकी बच्ची थी, तो वो एक दिन उसने उसको बड़ा ट्रेडिशनल सा जोड़ा पहनाया हुआ था, शलवार कमीज़ ऊपर दुपट्टा, जैसे एक ट्रेडिशन के नाम पर पहनाया। तो उस दिन वो बच्ची माँ के साथ नमाज के लिए भी खड़ी हो गई और बड़ी इस्लामी काम कर रही है। तो वो माँ बड़ी हैरान थी कि ये आगे पीछे तो इसने कभी नहीं किया। तो मैंने उन्हें एहसास दिलाया कि सिस्टर इसलिए कि आज इसने लिबास ही ऐसा पहना हुआ है कि जिस लिबास में वो आपको देख रही है कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो उसका खुद ब खुद दिल चाह रहा है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। और अगर हाथ नंगे, टांगे नंगी, आप बताइए कैसे कल एकदम ये बच्चे बाहया हो जाएंगे? ये तो अब सारी हमारे जहनों में आती है ना बातें। तो इसलिए इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम अगली आयतों को अब तिलावत सुनते हैं कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को रेस करना है कि वो हमारे बाद एक अच्छा सदका जारिया बने। और शऊर की ज़रूरत है, और शऊर जो है वो कुरान से आता है। पूरे रुकू का अगर मैं इकट्ठा तर्जमा पढ़ूँ तो आपको इसमें से जो एक खूबसूरत पैगाम मिलेगा वो क्या है कि जब इंसान को दीन की बात समझ आती है तो वो खामोश नहीं रह सकता। आए मैं इसके तर्जमा आपके सामने रखती हूँ। वद्रिब लहुम मसलन असहाबल करियत इज़ जाहल मुरसलून, और इनके सामने उस बस्ती वालों का किस्सा बयान करो जिनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने इनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर बनाकर भेजे गए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं हो मगर हमारी तरह के आदमी हो, और अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम तो महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो साफ साफ पहुँचा देना है और बस। वो बोले, हम तुमको नामुबारक समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अज़ाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज़ कर गए हो। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे कोई सिला भी नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं, और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं इनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो इसकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा न दे सकेगी और न वो मुझको छुड़ा ही सकेंगे। तब तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, बस मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जाओ। बोला, काश मेरी कौम को खबर हो कि अल्लाह ने मुझको बख्श दिया और इज्जत वालों में से किया, और हमने इसके बाद इसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी आतशी, सो इससे वो नागहां बुझकर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि इनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर इससे वो मजाक ही करते हैं। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने इनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? वो अब इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और इन सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। अब देखिए कि جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں نا تو پھر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایسے ہی نہیں کسی بھی تکلیف میں رکھتا۔ واقعہ بہت معروف ہے، حبیب نجار نام کا ایک شخص تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل میں عوام کا اتنا درد پیدا کیا کہ وہ قوم جو دو مختلف پیغمبروں کو جھٹلا چکی تھی، پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے، بعض دفعہ لوگ ایک نبی کو جھٹلا دیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرے نبی کو بھیجتے تھے، لیکن یہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بڑا خوبصورت معاملہ کیا، نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے لوگوں کی جیتے جی بھی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اچھے کام کرو، نبیوں کو نہ جھٹلاؤ۔ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور جب یہ شہید ہوا تو اس کی روح اللہ کے پاس گئی، تو اس نے جنت میں جب اتنی خوبصورت چیزیں دیکھی تو اس نے وہاں خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں تو یہ ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے تو اب میرا کام تمام کر دیا، لیکن جنت میں جو آپ نے مجھے اتنا خوبصورت مقام دکھایا ہے، اگر ان کو دکھا دیں۔ سمجھیے گا بات کو، یہ تڑپ آج ہمارے اندر نہیں ہے، اسی لیے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھتے ہیں۔ ہمارے دل میں لوگوں کو گناہ کرتے دیکھ کے وہ غصہ نہیں آتا، اور ان کی ہدایت کی فکر کم ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے نا، اب ہم کیوں برے بنیں، اب ہم کیوں گھر کا ماحول خراب کریں، اب ہم اپنے نیبرس کو کیوں کہیں۔ حالانکہ اس شخص نے زندگی میں حق ادا کر دیا تھا، لیکن اس کی روح کے ساتھ جب اللہ نے وہ سارے انعامات کیے جو کسی کو بھی اللہ کی بات کرنے کے جواب میں کہے جاتے ہیں، تو اس نے خواہش کی کہ یہ میرا خوبصورت انجام لوگوں کو دکھائیں، شاید میرا اچھا انجام دیکھ کر یہ ہدایت پا جائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ شاید لوگوں کو میرے اچھے حال سے پتہ چلے کہ میں حق پہ تھا، تبھی تو اللہ نے میری مدد کی۔ آج میں اور آپ ذرا اپنے اوپر لیں، ہم جس معاشرے میں اور جس دنیا میں جیتے ہیں، اور دوسروں کو تو چھوڑ دیں، غیر مسلموں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ کو غیر مسلموں پہ اتنا غصہ آتا ہے جتنا غصہ ہم نام نہاد مسلمانوں پہ آتا ہے۔ آج ہم دین کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیا ہم گرم ہیں کہ ٹھنڈے ہیں؟ آج ہم نے اپنے دین کو کیا سمجھا؟ چند خانوں میں بٹا ہوا صرف ہمارا دین یہ رہ گیا کہ پانچ وقت اٹھ کے نماز پڑھ لی، جس میں کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں سمجھ آیا، وضو کیا تو اس وقت بھی سوچیں کچھ اور تھیں، نماز کہیں سوچوں میں گزر گئی، کہیں نیند کے اثر میں گزر گئی، اور کچھ نہ کچھ اور عبادات کر کے ہم سمجھ کے ہم سب کچھ کر لیا۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جن کو آپ دیکھیں، ان سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہ یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بہت بھی اچھے شعور میں ہوں گے، کہیں گے نماز پڑھنا، نیکی کرنا۔ اگر میں بغیر کسی تمہید کے ساتھیوں سے جہاں بھی پوچھوں کہ یہ بتائیے کہ آپ نیکی کے نام پہ کیا کرتے ہیں، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ ٹولز ہیں، یہ تربیت ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اصل مقصد ہمارا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم از کم تین بار امت مسلمہ کو سورۃ بقرہ اور آل عمران میں کہہ دیا، وجعلناکم امتم وسطا لتکون شہداء علی الناس، کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں لوگوں کے اوپر ایک تھرڈ پرسن بنایا، تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، او مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئیں، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، کہاں فرما دیا، یعنی آج میں اور آپ، ہم امت مسلمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، ہم آج کتنے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے صرف اس بات پر کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ ہم سے صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ارد گرد والوں نے پڑھی ہے کہ نہیں۔ چاروں طرف آپ دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، اس کی وجہ کیا کہ ہم نے آج یہ دعوت کا کام چھوڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے حال میں مگن ہیں، ہم اپنے تعلقات بچاتے ہیں، ہم اپنی عزت بچاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو بھی تو پتہ ہے نا، ان کو نہیں پتہ کیا، آپ سب کے گھروں میں کتابیں ہیں، کسی کو دعوت بھی دیں گے تو بس ایسی ہی دیں گے کہ ٹھیک ہے بٹس اوکے، اگر آپ کا دل چاہے تو آ جائے۔ وہ تڑپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے؟ خیر خواہ ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا نام دینداری ہے۔ آپ اور میں بیٹھ کے اکیلے میں سب سے پہلے تو اپنا سوچیں، ابھی ہم اپنے اس دین کو کتنا سمجھے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسلام اے ٹو زی، شروع سے لے کے آخر تک، مجھے ایک اسٹریچ میں بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں کون سی چیز پہلے آتی ہے، کون سی بات میں آتی ہے، تو آپ تو سارے ماشاءاللہ بتا سکتے ہوں گے، لیکن اکثر جگہوں پہ جہاں میں نے پوچھا وہ نہیں بتا سکتے۔ آج ہم تبلیغ کرتے ہیں کسی کو تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو پہلے کون سی باتیں بتانی ہیں، کون سی بات میں بتانی ہے۔ کسی کو گناہوں پہ اگر ہم ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تب بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی کس بات پہ ہمیں کتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سارے رکوع سے جو میرا اپنے لیے اور آپ کا اپنے لیے سبق ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل میں اس چیز کی تڑپ پیدا کریں، और ये तड़प यकीन करें कि किताब पढ़े बगैर नहीं आती। हैरत उन लोगों पे होती जो किताब पढ़ के भी फिर अपनी ज़िंदगियों में महफूज हो जाते हैं कि हमने जी बहुत पढ़ लिया, तर्जमा भी पढ़ लिया, टेस्ट भी दे दिए, तैयारियां भी कर ली, अब गोया कि अपनी ज़िंदगी को हम एक रंग पे रखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल, बेटा आप उधर ले जाइए इसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में दो जगह फरमाते हैं कि जिसमें अल्फाज के फ़र्क से पता चलता है कि फ़ला अल्लाह का बाकी नफ्स कला सारे मिल्लम यू मिनु बि हाजल हदीस या सफ़ा, क्या नबी आप तो इन लोगों के गम में घुल रहे हैं, आपका सीना हंडिया की तरह खोलता था, सारी रात आप एक आयत पे रोते रोते हिचकियां बन जाती थी, आज हम कितना ज़्यादा लोगों के हाल पे रोते हैं। हमें तो अपने रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं हम टोकते। मैंने देखे आज माँ बाप अपने बच्चों को रोकते टोकते हुए झिझकते हैं, कहते हैं आप इनको भी तो बता, बेटा देख लें, आप देख लीजिए अगर आप करना चाहें, बेटा आप देख लें, ऐसे बात करते हैं जैसे किसी को खाने में कोई चीज़ चूज़ करानी है। माँ बाप नमाज़ पढ़ लेते हैं, बच्चों को नमाज़ के लिए नहीं उठाते। बूढ़े बाप मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, जवान बेटे जब वो घर में पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे दिल में इतनी भी तड़प नहीं है जितनी इस हबीब के दिल में दूसरों के लिए थी? वो माँ बाप जिनके लिए हम इतनी मोहब्बत की बात करते हैं, बाद में हम उन्हीं के पीछे कैसे बुरे सदक़े जारिया बन के गुनाहों को कमाते हैं। तो इस सबक में अगर आप, मैं अगर कभी भी कहीं भी कुरान पढ़ें, जब भी आप इन आयतों पर पहुँचें, तो आप ज़रूर सोचें अपने दिल पे तब लें इनको कि मुसलमान होने के नाते मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और वो मकसद क्या है कि जिस दीन को अल्लाह ने हमें दे दिया हम दूसरों तक पहुँचाएँ। लेकिन अभी तो हम मुसलमान मुसलमानों की सलाह से नहीं फारिग होते, तो हम दूसरों पे कहाँ लेंगे? कायनात में अल्लाह ताला की जो निशानियाँ फैली हुई हैं, जिसको हम दिन रात देखते हैं, कभी फ्रूट चाट की सूरत में, कभी रंग बिरंगी सब्जियों की सूरत में, वो पहाड़ सूरज, कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई। आप सोचें कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो एक ब्लैक एंड वाइट कलर की दुनिया बना देते, कोई चीज़ ही खूबसूरत ना होती, फोहड़ तरीके से होती। अमूमन हम जब दीन की बात करते हैं तो हमारे दिल में कोई सलीका नहीं होता, हम कहते हैं दीन है अच्छा वहाँ टूटी कुर्सियाँ रख दो, अच्छा दीन ही है ना, खैर है जो भी दिल नहीं चाहता वो पहनते, चलो दीन की महफिल में जाना है। बहुत कम लोग होते हैं कि जो दीन के लिए इख्तमाम करें, जिस चीज़ की इंसान की ज़िंदगी में वैल्यू होती है उसके लिए करते हैं। शादी में जाएँ तो हम किस तरह से अपने बारे में इतना सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह के नाम पे हम नहीं कर पाते ना। तो अब ये सारी बातें सुनते वक्त इसका तर्जमा मैं आपके सामने रखती हूँ। आयत नंबर 33 से अल्लाह ताला फरमाते हैं, वायतुल्लहुमुल अर्दुल मैतत अहयैनाहा वअख्रजना मिन्हा हब्बं फमिन्हु याकुलून, और एक निशानी इनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने इसको ज़िंदा किया, यानी ज़मीन मुर्दा होती है मुराद है कि वहाँ सब्ज़ा नहीं उगता, और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए, और इसमें चश्मे जारी किए। आप तसव्वुर में सोचे, किसी भी जगह कभी गए हों खुली जगहों पर जहाँ ये सब चीज़ें देखी हों, तो इसको विजुअलाइज़ करके सोचें कि अल्लाह ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए, और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि इनके फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, फिर ये आखिर शुक्र क्यों नहीं करते? कितना शिक्वा है अल्लाह का, इतना कुछ खाते हो, इतना कुछ पीते हो, एक लहसुन घर में ना होना तुम कहते कुछ नहीं, हंडिया पक नहीं सकती, टमाटर ना हो है ही नहीं, टेस्ट ही नहीं, इतनी सी चीज़ को हम इतना बड़ा इशू बनाते हैं, लेकिन खाते पीते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? देखिए यहाँ शुक्र को भी समझ लीजिए कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करो और उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी मानो। इंसान अच्छा खाए, अच्छा पहने और उसके बाद अच्छे काम करे, अल्लाह कभी हिसाब नहीं लेगा आपसे। मसला कहाँ बिगड़ता है? जब खूब अच्छा खाते हैं उस दिन ज़्यादा बिगड़े हुए काम करते हैं। वीकडेज़ में तो हो सकता है कुछ काबू में हो, वीकेंड की नाइट्स में हमारे काबू में नहीं रहता कि हम अल्लाह की बात भी माने। तो शुक्र क्या है कि इंसान अल्लाह की नाफरमानी से डरे। वो खुदा पाक है जिसने ज़मीन की नबातात के और ख़ुद इनके और जिन चीज़ों की इनको ख़बर नहीं सबके जोड़े बनाए। तब देखिए ये आयत आ गई कि हर चीज़ जोड़े में है, और ये अभी 19th century में फ़र्स्ट टाइम डिस्कवर हुई। जिस शख्स ने इसको डिस्कवर किया कि कायनात की हर चीज़ जोड़ा है, तो उसको जब पता चला कि कुरान में ये 1400 साल पहले आ गई, तो मुसलमान हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे से पहले ये चीज़ किसी ने नहीं की। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो इस वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है। आप सोचिए, जब आप आए थे तो बाहर रोशनी थी, शायद जाएंगे तो अंधेरा होगा, किसने इस रोशनी को अंधेरे में बदला? इतनी कोशिश कर लें आप इस चादर को उतारने की, नहीं उतर सकती। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब के सब काम हम कर रहे होते हैं, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पे चलता रहता है, यानी इंसान तुम क्यों नहीं अपने रास्ते पे चलते? जब अल्लाह ने उसको एक वक्त दिया, उठना है उठता है, जागना है जागना है, तुम बिस्तरों में सोए रहते हो, सूरज आके بوڑھا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تم اس وقت آنکھیں ملتے ہو اور ساری رات گزرتی ہے، جب صبح ہونے کے قریب ہوتی ہے تو تم بستر پہ پڑ جاتے ہو. کتنا انسان فطرت سے لڑتا ہے. یہ خدا غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ کھٹتے کھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. کتنا خوبصورت ٹائم مینجمنٹ سکھا دی. آپ دیکھیے کائنات میں سب چل رہے ہیں، اور حرکت کسی ہے، کتنی سپیڈ سے چل رہے ہیں. کبھی ٹکراؤ ہوا، کبھی آپ رن وے پہ دیکھیں کتنے کتنے منٹ آپ کے جہازوں کو وہ کھڑا رکھتے ہیں کہ ابھی دوسرا جہاز لائن میں لگا ہوا ہے، وہ جائے گا تو آپ جائیں گے، لیکن پھر بھی ٹکراؤ ہو جاتا ہے. کائنات میں نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تمہاری اس دنیا میں کیوں ٹکراؤ ہوتا ہے. تم اللہ کی نہیں مانتے، اس لیے تم پریشان ہوتے ہو. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوا، اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سچ کے نہیں. آج اب دیکھیے کہ اللہ کی ایک تو قرآن کی آیت ہے نا، اس سے تو ہم منہ پھیرتے ہی ہیں، ہم کائنات کی نشانیوں سے بھی منہ پھیرے ہوئے ہیں. دنیا کی کوئی چیز ہوگی، اس میں ہماری رغبت، ہمارا دل، ہمارا شوق کتنا بڑھ جاتا ہے، لیکن جب کائنات کے اندر اللہ نے دیا، کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے متاثر ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں ایک فانوس لگاؤ کسی کے گھر میں، ہم جائیں گے ہم 10 دفعہ دیکھیں گے، واو کتنا خوبصورت ہے، کیسا اچھا ہے، لیکن اللہ نے آسمان پہ ستارے رکھے. وہ کون سی آخری رات تھی کہ ہم رات کو ستاروں سے باتیں کرتے ہوئے سو گئے؟ کبھی ہم نے کائنات میں نکل کے دیکھا؟ ہم تو گھروں میں بیٹھ کے ایکسرسائز بھی کرنی ہوتی ہے تو گھر میں ہی کر لیتے ہیں، تاکہ باہر ایک کھلی جگہ جا کے واک کرتے، آسمان کے نیچے دیکھتے، خوشی ہوتی. آج کل ہمارا تعلق فطرت سے کٹتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں، پہلے کھلے آسمانوں میں سوتے تھے تو آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی تھی ستاروں کو دیکھنا، کبھی کچھ، فجر سے پہلے ہی اٹھ گئے. جتنے پنکھے بڑھتے گئے اور اے سی آ گئے، تو اب تو 9-10 بجے اپنی مرضی کا سورج رکھ لو، جب دل چاہے پردہ ہٹا لو تو سورج کو بلا لو. یعنی ایسے لگتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ایک مادہ پرستانہ ماحول میں آ گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے کٹ گیا. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. دیکھیے کیسی ناشکری ہے کہ دل چھوٹا ہے تو کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں، اللہ خود کھلائے گا، اپنے گھر میں جتنا پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے انسان کا دل جو ہے وہ اور زیادہ گھٹا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. فرمایا ایک چنگھاڑ کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں ملے گی کہ وہاں ہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ ان کو آپ پکڑے گی. اب یہاں سے موت کا منظر ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت ان کے حالات کیا ہوں گے، پھر نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے. سوچیے ذرا اگلا حصے میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک انسان قیامت کے جھٹکوں کے وقت پہ سوچ رہا ہوگا. فرمایا و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا. کہا جائے گا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے. اس روز کسی شخص پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. سوچیے یعنی قیامت کے دن جو میں آج کر رہی ہوں مجھے وہ ملے گا. دیکھیے کیا دنیا کیا ہے، ایگزامینیشن ہال، اور قیامت کا دن کیا رزلٹ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا قیامت والے دن سب کچھ ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا اس دن، صرف ڈکلریشن ہے، آپ کی گریجویشن ہے. کدھر ہے؟ دو میں سے ایک بات ہے. کیسے؟ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. سلام ان قول من رب رحیم، اللہ کی ذات سلام بھیجتی ہے. اور اس کے برعکس دوسرا رخ، اور گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد ہم نے تو تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بتائیے کون کہتا ہے جو شیطان کو پوچھتا ہوں میں؟ کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن یہاں مراد ہے شیطان کی بات ماننا. کبھی کسی کو آپ نے وہ شیطان کو پوجا کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، لیکن جو ہم غلط کام کرتے ہیں وہ شیطان کی پوجا ہے. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बताओ सारी ज़िंदगी उसकी मानते रहे हो हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है, और इसने तुमसे पहली बहुत सारी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नुम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती है, बस जो कुफर तुम करते रहे हो इसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। अब आप देखिए कि सारी चीज़ों से इंसान को निकाल के उस जहन्नुम में डाला जा रहा है, अब एक इंसान अपने खिलाफ़ कुछ बोलना चाहेगा अपने हक़ में, तो फरमाए आज हम इनके मुंहों पर मुहर लगा देंगे, जो कुछ ये करते रहे इनके हाथ पांव इस हमसे बयान करेंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। यानी ये जो हमारे पांव हाथ हैं ना, ये हमारे स्पाइज़ हैं, हमारे जासूस हैं, हम इनको खिलाते हैं पिलाते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ कराते हैं, क़यामत के दिन ये हमारे खिलाफ़ बोलेंगे कि अल्लाह हाँ ये गलत जगह उठते थे, ये गलत चीज़ें देखते थे, ये गलत चीज़ें टाइप करते थे, ये गलत बातें सोचते थे। और फिर फरमाया और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटा कर अंधा कर दें। सोचें बिल्कुल इन आंखों की जगह कट लगे हों, आंखें ख़त्म हो जाएं, क्या अल्लाह ताला नहीं कर सकता? और ऐसा हुआ एक जगह के रात को सोए लोग तो ठीक थे, सुबह उठे तो आंखें नहीं थी उनकी। फिर वो रास्ते को दौड़ें तो कहाँ देख सकेंगे, और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहाँ से ना आगे जा सकेंगे ना पीछे लौट सकेंगे, और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं इसे खिलकत में ऊंधा ही कर देते हैं, तो क्या ये समझते नहीं? यदि ज़रा लंबी उम्र है, शौक़ है ना लंबी उम्र का, कितनी 40 50 60 70 80, जब उम्र मिलती है तो जीने का शौक़ ही ख़त्म हो चुका होता है। 80 से ऊपर किसी को अपने ख़ानदान के शौक को सोचे, नज़रें लगी होती हैं लोगों की कि कब खैर से अभी अल्लाह के घर चले जाए, कोई 60 70 में चला जाए तो इज्जत से जाता है, वरना ज़रा ऊपर होके और साहब बहुओं पर बच्चों पर बोझ बने तो लोग गिन रहे होते हैं कि आज तेरी बारी है कि मेरी बारी है। एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है और 10 बच्चे मिल के एक बूढ़ी माँ को नहीं रख सकते। अल्लाह कहते हैं कि क्या जिंदगियाँ इनको मिली उस वक़्त, इनको क्या पता चला उस वक़्त, इनके सामने ये सारा कुछ आ जाएगा और उस वक़्त उनको पता भी नहीं चलेगा। कितना इंसान अपने बारे में सोचता है, आप देखिए कि अगर सिर्फ मैं और आप अपने आने वाले वक्त को सोचें, आज नहीं तो कल बुढ़ापा आना है ना, क्या बनेगा? ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी है हमारे सामने कि हम इस दुनिया में बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा एक पहिया घूम रहा है। इस वक्त भी देखिए तो डिफरेंट एज के लोग बैठे हैं ना, क्या कोई बच्चा हमेशा बच्चा रहा, और क्या आप जवान हमेशा जवान रहेंगे? क्या बुढ़ापे को आने से कोई रोका? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो तुम्हारी जवानी मेरे रास्ते में क्यों नहीं लगती, तुम्हारा बचपन तुम्हारा बुढ़ापा मेरे रास्ते में क्यों नहीं लगता? सोचो क्या ये समझते नहीं? हमने इस पैगंबर को शेर कोई नहीं सिखाई और ना वो इसकी शान शान है, ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान है जो हिकमत से भरा हुआ है, ताकि इस शख्स को जो ज़िंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए। यहाँ पर अब रुक के गौर कर लें, पहली आयतें क्या थी? यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान से बात शुरू हुई थी, अब देखिए आखिरी रुकू शुरू हो गया कि ये किताब सिर्फ जिंदा लोगों को हिदायत देती है जो लेना चाहता है, हर एक को इससे नहीं मिलता। लोग इसको इतनी देर में रस्मन पढ़ पुढ़ के फारिग हो चुके होते हैं कि चलो भाई अब काफ़ी ब्लाइंड टल गई और काफ़ी हमें मुश्किलात से अल्लाह निकाल देगा, और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई, इनमें से हमने इनके लिए 4 पाए पैदा किए, ये इनके मालिक हैं, और इनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो इनकी सवारी है और किसी को हम ये खाते हैं। हम तो इतने नरम तबा हो गए कि हम तो अल्लाह के रास्ते में चलना भी छोड़ दीजिए, बैठना में मुश्किल लगता है। अल्लाह ताला कहते हैं कभी सोचा तुमने? क्या उन्होंने नहीं देखा जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई, इनमें से हमने इनके लिए चौपाई बनाए, इनके मालिक हर इनको इनके काबू में कर दिया तो कोई इनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और इनमें से इनके लिए और फ़ायदे और पीने की चीज़ें, दूध की तरफ इशारा, तो ये शुक्र क्यों नहीं करते? और उन्होंने खुदा के सिवा और माबूद बना लिए कि शायद इनको मदद पहुँचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज़ ताकत नहीं रखते, और वो इनकी फ़ौज होकर हाज़िर किए जाएंगे, तो ये इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं हमें सब मालूम है, कि इंसान ने देखा नहीं कि हमने इसको नुतफे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक तड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया, कहने लगा कि जब हड्डियां पुरानी हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम इसकी टहनियों को रगड़ कर ان سیاق نکالتے ہو؟ بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا۔ وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آخری پیغام پہ نظر کر لیجئے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب کو اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سورت یاسین کا ترجمہ ہے۔ کیا اس ترجمے نے آپ کو کچھ سوچنے پہ مائل کیا؟ کتنا کچھ اس میں، اگر ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے اس کے اوپر دیکھتے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں شعور کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔